نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. لا تحزن، غم نہ کرو، don't be sad. آج اس میں ڈے 8 کا آغاز کریں گے بہت ہی خوبصورت ٹپس کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ ہماری سیریز کو ہمارے اور دوسروں کے فائدے کا بنا دے اور ہم اسے بہترین فائدے لے سکیں. سب سے پہلے ہر روز کی طرح پارے کی آیتوں میں سے کوئی ایک آیت، کیونکہ قرآن پاک ہر دکھ درد کا علاج کرتا ہے. تو سورۃ آل عمران 153 ہے آج ہمارے سامنے. غزوہ احد کا تناظر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے بہترین انسان ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بہترین ساتھی ہونے کا لقب دیا، اور جنگ بھی وہ ہے کہ جس میں کہہ لیجئے کہ بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ جائیں. لیکن راہ حق کے یہ مسافر کیا عجیب مسافر تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو کسی نے کہا کہ دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یہ بات انہی کے بارے میں کسی نے کہی ہوگی کہ صحابہ کرام ایک ایسی کھلبلی کا شکار ہوتے ہوئے دکھتے ہیں کہ جہاں آپ کہہ لیجئے کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ پھگدڑ مچ گئی. اور ایسے میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہمارے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اس دکھ اور غم کے موقع پر جو خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام مجید کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتی ہے، اس تصدون ولا تلوون علی احد والرسول والرسول یدعوکم فی اخراکم فأثابکم غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو، اس پر ملول نہ کرو، یعنی غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. تو کیا پتہ چلا، آپ کے میرے غموں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو بدلنے والی چیز کہ جب سب گھبرا رہے ہوں، جب بھگدڑ مچ چکی ہو، جب لوگوں کو اپنی جان کی اور مال کی پڑی ہو، تو تم اس وقت مطمئن رہو. یاد رکھیے کہ جو بات کسی نے کہی کہ مصیبت تنہا نہیں آتی، وہ بالکل سچ ہے. جب کوئی مشکل آتی ہے نا، تو ہمارے رویے اس کو مزید مشکل کر دیتے ہیں. مثلا اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو چوٹ لگ جائے، تو یہ ایک غم تھا نا، لیکن ماں کا چیخنا، پکارنا، بلکہ بے ہوش ہو جانا، یہ غمم بھی غمن ہوتا ہے. تو زندگی میں کچھ لوگ چھوٹے غم کو بڑا بنا لیتے ہیں. آپ کے لیے ٹپ یہ ہے، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، ایسی چیز جس کو کہتے سر پہ پڑی، لیکن اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھیے. کیونکہ جب ایک انسان تکلیف اور آزمائش کے لیے پہلے سے تیار رہتا ہے، تو وہ عموماً گھبراتا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے رویوں کی وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہیں. جیسے انجیکشن لگوانا ایک تکلیف ہے، لیکن جب بازو کو کھینچ لیا جائے اور خود کو اور اکڑا لیا جائے، تو درد کا احساس بڑھتا ہے. تو آج سے اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھنا شروع کیجئے کہ جب گھبراہٹ طاری ہونے کا وقت آیا ہو اور سب گھبرا بھی رہے ہوں اور ہاتھ آئی چیز جانے کا اندیشہ بھی ہو، تو اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو جمع دے. پچھلے سبق میں جو ٹاپکس لیے تھے ان کا خلاصہ لے لیجئے. ہم نے جو ٹاپک پڑھا اس میں سب سے پہلے تھا غم نہ کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. دوسروں کی اذیت سے مت گھبرائیں. جو کھو گیا اس پر افسوس نہ کریں. چھوٹی چیزوں پر افسوس مت کریں. اور اس میں تو کہوں گی کہ دنیا ساری چھوٹی ہے. دنیا بھی چھوٹی، دنیا کے غم بھی چھوٹے، دنیا کی خوشیاں بھی چھوٹی. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پانے کے خوف میں یا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے چھن جانے کے خوف میں ہم فیخا خالدون، وہ کیفیت جو جنت میں جا کر اگر خلد میں بدل گئی تو اس سے خوبصورت کوئی نعمت نہیں، ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو زندگی میں دنیا کی چیزوں کو بہت بڑا نہ سمجھیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد بھی آئے گی. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا بنا کر بڑی بڑی چیزوں کو کھونے کے عادی ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک ٹاپک جو ہم نے اس میں کیا تھا وہ کیا تھا، فکروں کو دور رکھیے اور نیکی کر دریا میں ڈال. क्योंकि जब हम नेकी करके दरिया में डालने की बजाय लोगों से उम्मीदें लगा लेते हैं ना, तो फिर नुकसान क्या होता है कि हम किसी बात पे भी खुश नहीं रहते। फिर इसी तरह से टॉपिक था हमारे पास, लानत, मलामत और एतराज़ात पर रंज मत करें, क्योंकि अक्सर हमारे दुखी रहने की वजह लोगों की बातें ही होती हैं। फिर इसी तरह तंग दस्ती पर गम ना करें, क्योंकि किल्लत माल में सलामती है। बड़े घर के बड़े मसाइल हैं तो छोटे घर के छोटे मसाइल हैं। फिर जो भी वक़ू पज़ीर नहीं हुआ, इससे ना डरिए। खामखा आने वाले वक्त को सोचकर हौलते रहेंगे तो बदबख्ती होगी। फिर अहले बातिल और हासिदीन की तनकीद से गमगीन मत हो, क्योंकि हासिद और तनकीद करने वाला खुद इस चीज़ का इकरार कर रहा है अपनी ज़ुबान में कि आप में कोई खूबी है, तभी तो उसको आपकी फ़िक्र है। और इसी तरह जो अल्लाह ने आपके लिए मुकद्दर कर दिया है, इस पर खुश रहिए, स्माइल दीजिए, अपने आप को मुबारक दीजिए। अगर आपको अल्लाह ताला की तकदीर प्यारी है, पसंद है, और जो उसने दे दिया आप उस पर राज़ी हैं, तो दुनिया में कोई बंदा आपको दुखी नहीं कर सकता। मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर सोचती हूँ कि जो 10वें फ्लोर पे खड़ा है, उसको तो डर है गिरने का। पाँव फिसलेगा तो गिरेगा, थक्का पड़ा तो गिरेगा, तो जो खड़ा ही नीचे है उसको क्या मसला, वो तो खुश रहेगा ना। तो लिहाजा अपने लिए ये असूल रखिएगा कि मैंने ज़िंदगी में किसी ऐसी चीज़ को वजह बनाकर जो मेरे हाथ में नहीं, जिसको मैं बदल नहीं सकती, जिसको मुझे सिर्फ कबूल ही करना है, तो फिर मैं उस पर राज़ी क्यों न रहूँ। तो तकदीर से लड़ते नहीं हैं, उसको कबूल करते हैं। आज जिस टॉपिक से हम बात शुरू करने वाले हैं, नोट कर लीजिए, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और हर टॉपिक आपको यकीनन अपना लगता होगा, क्योंकि हमारे साथ मामला भी ऐसा ही है कि हम अपने से ज़्यादा दूसरों की बातों से परेशान हैं। तो टॉपिक है लोगों की हरकतें देखकर परेशान ना होइए। आइए देखते हैं इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, और फिर हमें ये बात का अंदाज़ा जो अभी तक हो चुका है, मज़ीद अच्छा हो जाएगा कि हम दूसरों ही की वजह से अक्सर दुखी रहते हैं। और जितना ज़्यादा अपनी ज़ात को मजबूत करते जाएंगे, अपनी कमियां बेशियां दूर करते जाएंगे, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको लोगों की बातों से बेनियाज कर देगा। लोग कभी हमें जान के तकलीफ़ देते हैं, कभी अनजाने में भी दे देते हैं, तो कैसे इन चीज़ों से परेशान होना छोड़ें। इस बात का यकीन कीजिए कि लोग ना नफ़ा नुकसान के मालिक हैं, ना मौत व हयात के, ना हशर और ना नशर, और ना सवाब और ना अजाब, किसी पर भी तो उनका इख्तियार नहीं है। एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिए बाद में, क्या मुझे कोई नुकसान दे सकता है, कोई नफ़ा दे सकता है? जीने और मरने का इख्तियार किसी और के हाथ में अल्लाह ने दिया, हमारे अपने इख्तियार में भी नहीं है। एक शायर ने यूं कहा, जो लोगों के तसर्रुफात और हरकात देख देख कर मुस्तरिफ हो, वो फिक्र के मारे मर जाएगा, जबकि जर्री और बेबाक मज़ा पाता। आप इसके साथ हौलने की कैफियत लिख रहे, यानी बात लोग हर वक्त इसी धड़के में रहते हैं, हाय को ये ना कर दे, हाय ये ना हो, तो वो तो कुछ ना करेंगे, ये अपनी फिक्र में मर जाएगा। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं, हम ऐसी ज़िंदगी में हैं कि अगर फरिश्तों को मालूम हो जाए तो वो हमसे इस पर तलवारों से जंग करें। जी, यानी ईमान वाले के दिल में इतना सुकून और इतनी खुशी होती है कि बादशाहों को पता चले तो वो फौजें ले आएं इस सुकून को लूटने के लिए, क्योंकि बादशाहों का मिजाज ये होता है कि हर अच्छी चीज़ पे हमारा हक है। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दिल पर कभी कभी ऐसे अहवाल गुजरते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि अहले जन्नत भी इस जैसे हाल से गुजरते तो वो इसे खुशगवार ज़िंदगी समझते। उन्होंने ये भी कहा कि दिल पर कभी कभी ऐसे अहवाल गुजरते हैं कि वो खुशी से ना चुटा है जब वो अल्लाह को याद करता है और इसकी मोहब्बत से खुश होता है। जी, कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त आया, अकेले में मुस्कुराएं कभी, कभी आपको ऐसा लगा कि वो किसी को पता ना लग जाए? कभी आपके दिल में ये आया कि किस चीज़ की खुशी है मुझे? कभी आपके दिल में ये आया कि मुझसे भी ज़्यादा कोई खुश होगा दुनिया में? और अगर नहीं आया तो फिर आपने अपने ऊपर काम करना है। और अगर आपको हर वक़्त या अक्सर ऐसी कैफियत महसूस होती हैं तो मुबारक हो, सच्चे ईमान की अलामत दिल में खुशी का होना है। खुशी बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। हम इसको बाहर की चीज़ें और वो भी नकली खिलौने, कपड़े, जूते, इससे बहलाते हैं। हमें से अक्सर लोग लग्जरियस लाइफ को खुशी कहते हैं, नरम गद्दों को, गरम कपड़ों को, नरम जूतों को, हालांकि ये तो बेजान चीज़ें हैं। दिल एक जिंदा दिल है, उसको बेजान चीज़ों से आप खुश नहीं कर सकते। बहला सकते हैं, जैसे बच्चे को गुड़िया दे दें, लेकिन बड़े ही औरत को गुड़िया देंगे तो वो तो कहेगी मुझे तो रियल बच्चा चाहिए। तो हमारे दिल की असल खुशी अल्लाह की याद है। इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह को जब जेल में डाला गया और जेलर ने दरवाज़ा बंद किया तो फरमाया, फदूरी बबई नहुम बिसूर लहू बाप बाति नहु फीहि रहमा व ज़ाहिरहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। जेल ही में थे कि फरमाया, मेरे दुश्मन मेरे साथ क्या कर सकते हैं, मेरी जन्नत और बहिश्त तो मेरे सीने में है, मैं जहाँ जाऊँ वो मेरे साथ साथ है, मुझे कत्ल कर दें तो शहादत का दर्जा मिलेगा, मुझे शहर से बाहर निकाल दें तो सियाहत यानी सैर होगी, सियाहत होगी, जेल में मेरे लिए खलवत है यानी तन्हाई। जी ज़रा से इसको लॉकडाउन से महसूस कीजिए। फदूरी बबई नहुम बिसूर लहू बाप। कितना अरसा आप में से कई लोग बाहर नहीं निकले, खुश हैं कि परेशान हैं? बस जवाब आपको अंदर से मिलेगा। जिनको घर में रहकर सुकून और खुशी मिल रही है और सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, वो तो कहेंगे सारी ज़िंदगी बाहर ना निकले तो हमें और क्या चाहिए। घर बैठकर मस्जिदों की नमाज़ों का अजर मिल रहा है तो हमें घर में पड़ी क्या बुरी। लेकिन जिनको घरों में सुकून नहीं, जिनके अंदर बेचैनी है, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। लोग कहते हैं जो अल्लाह को खो दे वो क्या पाएगा, और जो अल्लाह को पा ले इससे क्या खोएगा। ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो सकती। जो अल्लाह को पा ले वो हर चीज़ को पा लेगा, जो अल्लाह को खो देगा वो हर चीज़ को खो देगा। तो क्या सोचा आपने इस बात को सुनकर? क्या अभी भी आप लोगों की हरकतों को देखकर परेशान होंगी? नहीं होना। देखिए, लोगों का इख्तियार सिफर, लोगों की मनफी राय की परवाह सिफर। क्यों? हमारे प्यारे नबी ने एक दुआ सिखा दी, अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा आतैत वला मोती लिमा मनाता वला मोती लिमा मनाता वला यन्फउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। ए अल्लाह, दिल से कहिए, ए अल्लाह, जिसे तू दे इसे रोकने वाला कोई नहीं, और जिसे तू ना दे इसे देने वाला कोई नहीं, और किसी मालदार को इसकी दौलत तेरी बारगाह में कोई नफ़ा ना पहुंचा सकेगी। यकीन तो कीजिए इस दुआ पे, फिर देखिए कैसे आपका अंदर खुशियों से भर जाएगा। हम सारी ज़िंदगी यही बात नहीं सीखते और रो रो के खप खप के दुनिया से जाने के करीब होते हैं। जब अल्लाह दे तो कोई रोके नहीं, और अल्लाह ना दे तो बंदे क्या करेंगे। तो क्या सीखा कि जो लोगों की हरकत पर मुस्तरब रहेगा वो फिक्र से मर जाएगा। इसके बरक्स जर्री, बहादुर, बोल्ड, ब्रेव मैन, वो मज़े पाते हैं दुनिया के। हम ऐसी ज़िंदगी में हैं कि अगर फरिश्तों को मालूम हो जाए तो वो हमसे इस पर तलवारों से जंग करें। इब्राहिम बिन अदम ये जुमला कह गए तो बात तो सोचने की है। और इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह का ये जुमला आपको क्या दे रहा है कि दिल पर कभी कभी ऐसे अहवाल भी गुजरते हैं कि दिल खुश हो जाता है जब अल्लाह को याद करता है और इसकी मोहब्बत से खुश होता है। तो फिर अल्लाह की याद से दिलों को सुकून है। और जेल की तन्हाइयों में इब्ने तैमिया जो बात कह गए कि मेरी जन्नत तो मेरे सीने में है, जहाँ जाऊँगा वो मेरे साथ है, कत्ल कर दें तो शहादत, छोड़ देंगे तो सियाहत, और जेल में मेरे लिए तन्हाई, और बंदा मोमिन को वतबत्तल इलैही ही तब्दीला ही की तो ख्वाहिश होती है कि मैं अपने रब के साथ जुड़ूँ। तो क्या सीखा? लोगों की फ़िक्र नहीं करनी, अल्लाह की फ़िक्र कीजिए। खुदा न खास्ता किसी ने रब को खो दिया तो सब कुछ खो दिया, रब मिल गया तो सब मिल गया, जिसका रब उसका सब। जी अल्लाह का तकवा ही होगा तो हुकूकुल इबाद पूरे होंगे। और अगर लोग कुछ कहें, कोई गम हो, कोई फिक्र हो, कोई अंदेशा उनकी तरफ से, तो कह दीजिए उफव्विज़ अम्री इलल्लाह, मैं तो अपना सारा मामला अपने रब के सपोर्ट करती हूँ। खुश रहना आ जाएगा, जीना आएगा, और मैं कह सकती हूँ अगर आप इन टिप्स पे अमल करते जा रहे हैं तो आपका दिल गवाही देगा कि अब आपकी अगली ज़िंदगी पिछली ज़िंदगी से बहुत खूबसूरत और हसीन होगी। नेक्स्ट टिप लीजिए, जिस चीज़ की वजह से आप गमगीन हैं इसकी कीमत तो जानिए। देखिए, बच्चा छोटे से खिलौने के लिए रो रो के हाल बुरा कर लेता है। इसी तरह एक औरत, ना समझ बच्ची कह लें, छोटा सा खिलौना या चंद कपड़ों के जोड़े, कोई जूती, कोई मेकअप, कोई मामूली सी चीज़ ना मिलने पे नाराज़ हो जाती है। माँ बाप से नाराज़ हुई या शोहर से हुई, तो कभी आज के बाद किसी छोटी सी चीज़ की वजह से दिल में बोझ आए तो खुद से सवाल कीजिएगा, इसकी कीमत क्या है? 5-10 डॉलर की कीमत, 15-20-100 डॉलर, और आप उसके लिए अपनी कीमती लाखों करोड़ों से कीमती जिंदगी ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा सुभान अल्लाह ही वल्हम्दुलिल्लाह ही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहना मुझे हर उस चीज़ से ज़्यादा पसंद है जिस पर सूरज तुलू होता है। क्या आपको भी यही पसंद है? सलफ़ में एक बुज़ुर्ग ने मालदारों, इनके महल्लात और मकानात और मालों के बारे में कहा, हम खाते हैं वो भी खाते हैं, हम पीते हैं वो भी पीते हैं, हम देखते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन हमारा हिसाब नहीं होता, इनसे हिसाब लिया जाता है। यानी जिनकी चीज़ें वो हिसाब दें, आपको तो अल्लाह ज़ियाफ़त में खिला देगा सब कुछ। सच कहा है कि कब्र की पहली ही रात में कैसरो किसरा के महल्लात बुला दिए जाते हैं जी, क्योंकि जो महल में था, चाहे वो कैसर था या किसरा था, कब्र तो मिट्टी की ही होगी। और कुरान क्या कहता है? सूरत अल-अनाम में आता है, हम तुमको तन्हा तन्हा लेकर आएंगे जैसे हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। मोमिनीन कहते हैं, सदक अल्लाह व रसूलुहू, यानी अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा। इसके बरक्स मुनाफिक कहते हैं, सूरत अल-अहज़ाब की आयत है, अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादा किया है वो धोखे के अलावा और कुछ नहीं। नाउसुबिल्ला। ज़िंदगी सोच और फिक्र की ताबे होती है। आप जिस फिक्र के साथ रहते हैं, जिसको नशो नुमा देते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, वही आपकी ज़िंदगी में मौसर होती है। ज़िंदगी नाखुशगवार हो या खुशगवार, सलफ़ में से किसी का कौल है, अगर तुम्हारे पैर में जूते ना हों तो उसे देखो जिसकी पिंडलियाँ कट गई हों। पैरों की नेमत पर अपने रब का शुक्र अदा करने लगोगे। शायर कहता है, किसी हादसे के अंदेशे से मैं फिक्र में दुबला नहीं होता, जब वो वकूअ पज़ीर हो जाता है तो मैं घबराता नहीं। यानी ना वक्त से पहले परेशान हूँ कि आ ना जाए, हादसा ना हो जाए, तकलीफ़ ना आ जाए, और जब हो जाता है तो मैं कहती हूँ गुजर ही जाएगा। क्या खूबसूरत स्ट्रेटेजी है। इसके बरक्स क्या हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान तो नहीं होते? तो आज के बाद इस उसूल को पल्ले से बांध लीजिए। पहले चीज़ की वैल्यू तो लीजिए। किसी ने एक मौके पे कुछ कहा, ऐसी कुछ ससुराली ताल्लुकात में परेशानी थी, तो कहने लगी, मियाँ तो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मेरा रिलेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन ससुराली माहौल में ही घर में कोई और थे तो वो हर वक्त तनकीद, चिड़चिड़, जो कुछ भी राह जाते की बातें, तो क्या करूं? तो मैंने उनको ये कहा था कि एवेल्यूएटेड, इसको वैल्यू दीजिए। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, एक औरत के लिए शौहर बहुत अहम होता है, जैसे शौहर के लिए बीवी अहम है। वो नाराज़ हैं, वो रूठें, वो गुस्सा करें, वो ना, इट मेक अ डिफरेंस। रह गया घर में कोई ऐसा ससुराली रिश्ता कि जिसका आपके साथ कोई ऐसा मामला ही नहीं, तो आप उसकी बात को अहमियत ना दिया करें। लिखिए एक जुमला, लोगों को सिर्फ उतनी अहमियत दें जितने वो आपके लिए अहम है। हम ऐसे लोगों को जो हमारी ज़िंदगी में अहम भी नहीं होते, इतनी अहमियत दे देते हैं जितनी हमें अपने प्यारों को देनी चाहिए, और बाज़ दफ़ा प्यारों को नाराज़ करके दूसरों की नाज़ बर्दारियाँ करते रहते हैं। तो आज इस असूल को अगर आप सीख जाएंगे ना, तो मुझे यकीन है कि बहुत सारी इंडो पाक कल्चर में रहने वाली बहनों के कम अज़ कम मसाइल हल हो जाएंगे, जो सिर्फ साइड के रिश्तों की वजह से परेशान रहती हैं। फिर अल्लाह के नबी की ये रिवायत जो हमने सुनी कि सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहना मुझे सब चीज़ों से ज़्यादा महबूब है जिन पर सूरज तुलू होता है, तो ये सही मुस्लिम की रिवायत है 6847। और एक और रिवायत है सिलसिला सहीहा की 1270, अगर अल्लाह के यहाँ दुनिया एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी ना पिलाता। तो फिर क्या करें? कब्र की पहली रात को याद कीजिए। अक्सर लोगों को मैं ये जुमला बोलती हूँ, कब्र की पहली रात कैसी होगी? दुनियावी महल्लात फरामोश हो चुके होंगे, क्योंकि सूरत अल-अनाम 94 में अल्लाह ताला कहते हैं, हम तुमको तन्हा तन्हा लेकर आएंगे जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया है। फुरादा के लफ्ज़ हैं, इसी पर एक लेक्चर भी था हमारे पास जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ था और मैं मर गया। तो बात यह है कि जिसको वो याद रहेगा ना, तो फिर वो दुनिया में ज़्यादा लोगों की बातों से मुतासिर नहीं होगा। सरकश इंसान क्या चाहता है? अय्याशी की ज़िंदगी। दूर से जहन्नुम की झलक दिखाई जाएगी, सारी अय्याशी जहन से महव हो जाएगी। और एक रिवायत में भी है कि सारी जिंदगी नेमतों में पलने वाला लेकिन था सरकश, दूर से जहन्नुम दिखाई जाएगी, सब कुछ लज्जतें मज़े ख़त्म। इसके बरक्स एक मुत्तकी अगर दुनिया में तंग हाल है, परेशान है, सब्र की उम्मीद पे सहता जाता है, क़यामत के दिन दूर से उसको जन्नत की एक झलक दिखाई जाएगी, तो सब गम जहन से महव हो जाएंगे। और अगर आप मोमिन का मुकाबला मुनाफिक से करना चाहें तो मोमिन को अल्लाह के वादों पर एतबार होता है, जबकि मुनाफिक अल्लाह के वादों से बेएतबारी महसूस करता है। मोमिन आखरत को मुकद्दम रखता है, यानी प्रायोरिटाइज करता है, मुनाफिक दुनिया को प्रायोरिटाइज करता है। मोमिन दुनियावी गम इतने नहीं लेता दिल पे, उसको हकीर लगते हैं छोटे-छोटे गम, मुनाफिक को आखरत हकीर लगती है। और मोमिन की ज़िंदगी खुशगवार होती है, आखरत भी होगी इंशाल्लाह, और मुनाफिक की ज़िंदगी भी नाखुशगवार, और आखरत में तो जो होगा वो अल्लाह जानता है। सूरह हदीद की आयत 20 अपने नज़रों के सामने रखा करें। एलमो अन्नमल हयातु दुनिया, खूब जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा जीनत और आपस में फ़ख्र और मालो औलाद में एक का दूसरे से अपने आप को ज़्यादा बतलाना है। जैसे बारिश और इसकी पैदावार किसानों को अच्छी मालूम होती है, फिर जब वो खुश्क हो जाती है तो जर्द रंग में तुम इसको देखते हो, फिर वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है। और आखरत में सख्त अजाब और अल्लाह की मगफरत और रजामंदी है, और दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के सामान के और कुछ भी तो नहीं। वो कहते ना, किया है तूने मताए गरूर का सौदा, फरेबे सूदों जिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्तों पेवंद, बुताने वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या खूबसूरत अशआर अल्लामा इकबाल के, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इसके अलावा सब वहम के बुत उनको तोड़ कर फेंक दीजिए, तो जब रब साथ है तो हमें किसी और की परवाह भी नहीं है। फिर इसके बाद एक और टिप लीजिए, जब तक आप लोगों से अच्छा सलूक करते हैं, क्या होता है, आपको रंज की ज़रूरत नहीं। जी, ये बहुत अहम बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, क़यामत के दिन मैं इस हाल में आऊँ कि लोग मुझ पर जुल्म कर चुके हों, यानी मैं मज़लूम हूँ, मैं इस पर खुश हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं जालिम बन कर आऊँ। तो सबसे अहम बात है कि लोग जो भी करें उसको साइड पे कीजिए, आप लोगों के साथ क्या करते हैं। जब तक आप लोगों से अच्छा सलूक करते हैं, आपको रंज की ज़रूरत नहीं। लोगों के साथ हुस्ने सलूक खुशबख्ती की बात है। सही हदीस में आता है कि क़यामत में अल्लाह ताला बंदे का हिसाब लेते हुए फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया नहीं, मैं कैसे खिलाता, आप तो रब्बुल आलमीन हैं। फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता कि मेरा फलां बंदा भूखा था लेकिन तूने इसे खिलाया नहीं, तो अगर इसे खिलाता तो इसे मेरे पास पाता। ऐ इब्ने आदम, मैं प्यासा था, तूने मुझे पिलाया नहीं, रब्बुल आलमीन मैं आपको कैसे पिलाता। फरमाएगा, तू नहीं जानता कि मेरा फलां बंदा प्यासा था, तो अगर पिलाता तो इसे मेरे पास पाता। इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी इयादत नहीं की। कहेगा, मैं आपकी इयादत कैसे करता, ऐ रब्बुल आलमीन, आप तो रब्बुल आलमीन है। फरमाएगा, तू नहीं जानता कि मेरा फलां बंदा बीमार था, अगर तूने इसकी इयादत की होती तो मुझे इसके पास पाता। कई दफ़ा आपने ये हदीस सुनी होगी, क्या ये बिल्कुल हमारे माइंडसेट से ऑपोजिट नहीं? हम कहते हैं मेरा हाल ही नहीं पूछने आए, इतनी बीमार थी, मेरी उंगली में दर्द था फिर भी नहीं हाल पूछा इन्होंने, मेरे घुटनों में दर्द था, मेरे सर में दर्द था। यदि हर जुमले पे गौर कीजिएगा बाद में तो आपको दिखेगा कि जो अल्लाह के नबी हमें सिखाना चाह रहे हैं, अमूमन हमारा हाल उससे ऑपोजिट होता है। यहाँ पर गौर की बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मुझे इसके पास पाते, इससे पहले ये फरमाया था कि उसे मेरे पास पाते बात यह कि मरीज़ वगैरह का दिल टूटा हुआ होता है, और अल्लाह टूटे दिलों के पास रहता है। जी, यानी पास पाने से मतलब समझ गया, यानी उसका दिल खुश हो जाता, जो बीमार है तो तुम उसको खुश करते तो मुझे खुश करते। जैसा कि हदीस में आता है कि हर तर जिगर वाले के साथ हुस्ने सलूक में सवाब है, यानी इंसान तो इंसान, जानवर भी। ये भी रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की एक तवायफ को जन्नत में दाखिल कर दिया क्योंकि इसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। इसी पर कयास किया जा सकता है कि जो खिलाए पिलाए, तंगी और हरज दूर करे, इसका बदला क्या होगा। एक हदीस में कि आपने फरमाया कि जिसके पास फाजिल ज़्यादा रहो, एक्स्ट्रा खाने खाना, पानी, कपड़े वो इसे दे दे जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास फाजिल सवारी हो वो इसे दे दे जिसके पास सवारी ना हो। जी, अलमारियाँ तो देखे हमारी बंद नहीं होती, और कोई प्लान भी नहीं है मुस्तकबिल करीब में पहनने का। मौसम पे मौसम बदलते जाते हैं, हमारी अलमारियाँ बंद नहीं होती, तब और निकलते हैं पिछले जब और आ जाए। अब ये दे दो, क्या करना उन चीज़ों को, ना आपके काम ना मेरे काम, और उन्हीं को संभालने समेटने में नमाजें तक चली जाती हैं, बाकी बातें तो बात की हैं। हातिम ताई ने कहा था, अगर तुम्हारे पास ऊँटनियाँ हों तो अपने रफीक को अपने पीछे पैदल चलने के लिए ना छोड़ो, अपनी ऊँटनी बिठाकर इस पर सवार कर लो, ऊँटनी ना माने तो इसे सजा दो। हातिम ने मेहमान की तलाश में अपने गुलाम को भेजते हुए कहा था, आग जलाओ, रात ठंडी है, अगर कोई मेहमान आ जाता है तो तुम आज़ाद हो। अल्लाह अकबर, ऐसे ही तो फिर उसको हातिम ताई नहीं कहते ना। हातिम अपनी बीवी से कहा करता था, जब खाना बना लो तो खाने पर किसी अच्छे आदमी का इंतज़ार करने दो कि मैं अकेला नहीं खाया करता। तभी तो कहते हैं कि मेहमान का खाना सदका है। एक और शेर में इसने इस मजमून को यूं अदा किया, घर वालों, माल तो आनी जानी चीज़ है, और इसके तस्करे और चर्चे रह जाते हैं। जब दम निकलने लगता है और कलेजा मुंह को आता है, तब माल दौलत आदमी के काम नहीं आते। उस वक्त तो बंदा यही कहता है ना, माली माली, दुनिया में तो यही कहते हैं, और उस वक्त फिर बांटने लगते हैं, ये उसको दे दो, ये उसको दे दो। एक शेर भी है, किसी मालदार रिश्तेदार ने अब हमारे फख्र में इजाफा नहीं किया, ना मुख्ताज और गरीब ने हमारे हसब नसब को हकीर ठहराया। अमूमन लोग मालदार रिश्तेदारों से बहुत ताल्लुक़ जोड़ते हैं ना, वो फलां हमारे अंकल हैं और वो करोड़पति हैं और उनकी इतनी गाड़ियां, आपको क्या मिले। और कोई गरीब है तो उसको लोग बुलाते नहीं पास, कहते हैं छोड़ो आप क्या कहें, ये गरीब और हमारी खाला और हमारी पप्पू हैं, तो ये उससे उलट कहते हैं। इसी तरह उरवा बिन हिजाम ने कहा, तुम मोटे ताज़े हो, मेरे चेहरे पर दुबलापन है, क्या इस वजह से तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। अहले हक सख्त कोश होते हैं, मैं अपना जिस्म यानी खाना कई लोगों में बांट देता हूँ और खुद ठंडे पानी के घूंट पी कर रह जाता हूँ। यानी खुद को खिला पिला के जो जिस्म मोटा करना था, मैं उसकी जगह दूसरों को उस खाने में शामिल करके उनको ताकत दे देता हूँ और खुद थोड़े पे गुजारा करता हूँ। ये हैं खुश रहने के राज। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मुबारक का एक पड़ोसी यहूदी था, यानी हम तो ये लफ्ज़ सुनकर ही परेशान हो जाएं, लेकिन अल्लाह वाले किस तरह नेकियां कमाते थे। आप अपने बेटों से पहले इसे खिलाते और कपड़े पहनाते थे। लोगों ने यहूदी से कहा, अपना घर बेच दो। इसने कहा, मेरे घर की कीमत 2,000 है, 1,000 मकान की और 1,000 इब्ने मुबारक के पड़ोस की। अल्लाह अकबर, कभी आपका हमसाया कहता है आपके लिए और मेरा हमसाया मेरे लिए। ये गवाहियां जमा कीजिए दुनिया से, ये काम आएंगी आगे। इब्नुल मुबारक ने जब ये बात सुनी तो दुआ फरमाई कि अल्लाह इसे इस्लाम की हिदायत दे, चुनाचे वो मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। ये है दिलों को मोहलिए, इसी मौजू से एक लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, दिलों को मोहले। और अमेरिका में थी उन दिनों में, शायद 3 साल होने को होंगे, तो बहुत इशू चल रहा था मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स में, तो बहुत रेसिज्म और इस तरह की कैफियत थी। तो किसी के सवाल के जवाब में या उनकी फरमाइश पे ये बात हुई थी कि हम गैर मुस्लिम हमसायों को अपने बारे में कैसे साबित कराएं कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, तो उसमें बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स थी, कभी मौका मिले तो ज़रूर सुनिएगा। और ये अख्लाक है, खिलाइए गैरों को, खिलाइए इस्लाम पिलाने के लिए, ये नहीं कि सिर्फ उनसे राहो रस्म में, और जहाँ दीन की बात है कहते नहीं इस पर हम बात नहीं करते। इब्नुल मुबारक एक बार हज के सफर पर निकले, उन्होंने देखा कि एक औरत ने कूड़े पर से एक मरा हुआ कौवा उठाया। आपने इसके हालात जानने के लिए अपना गुलाम इसके पीछे भेजा। औरत ने बताया, हमारे पास 3 दिनों से कुछ नहीं सिवाय इसके जो हम कूड़े से उठा लाए हैं। आपकी आंखें भर आईं, आपने काफले वालों को हुक्म दिया कि इस बस्ती में खैर खैरात तकसीम करें और वहीं से लौट आए। इस साल हज तरक कर दिया। ख्वाब में दिखाया गया कि कोई कहने वाला कह रहा है, हज कबूल हुआ, गुनाह बख्श दिए गए और कोशिश कामयाब हो गई। जी, ये है वो बात जो अल्लाह ताला सूरत हशर में एक सहाबी के अमल पे बात करते हुए कहते हैं, वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं अगर चेने खुद सख्त ज़रूरत हो। कभी सोच सकते हैं हम कहते हैं हमारा पेट भर जाए पहले, नहीं अब ज़रा कल का भी रख लें, अच्छा शाम को क्या खाएंगे, अच्छा फिर वो फिर वो फिर वो, और ये अपना पेट छोड़कर यानी रात को अंधेरा कर दिया चिराग जलाने और ठीक करने के बहाने, और खुद मुंह हिलाते रहे और मेहमान खाता रहा। ये चीज़ें हैं खुशियों वाली, हम तो न जाने घर को खाने से भरने को खुशी कहते थे। एक शायर कहता है, अगर मैं अपने दोस्त से जुदा, इसके ज़मीन व आसमान से दूर हूँ, लेकिन मैं इसकी मदद करने वाला, इसकी परेशानी को दूर करने वाला और इसकी आवाज़ पर लब्बैक कहने वाला हूँ, और जब वो कोई अच्छा कपड़ा पहन लेता है तो मैं ये नहीं कहता कि काश मुझे भी ये मिल जाता। जी हम दूसरों के देख देख के मंगवाते हैं, अच्छा मेरा भी ऐसा मंगवा दे, अच्छा मैं भी ये ले लूँ, फिर खुशी कहाँ मिलेगी। आफरीन है इस बेहतरीन अखलाक, खूबसूरत आदत और जमाले खुल्क पर, हुस्ने अखलाक और खैर के काम में मुबालगा भी कोई करे तो वो नदामत नहीं उठाएगा, हाँ थोड़ी सी गलती हो तो इस पर नदामत होती है। इसी मानी में एक शख्स ने कहा, खैर बाकी रहने वाला है अगरचे कितना ही ज़माना हो जाए, और शर खबीस तरीन ज़्यादे रहा है। तो क्या सीखा आपने मैंने, दूसरों को नफ़ा दीजिए, आपका सलूक अच्छा है दूसरे जो मर्जी कहें, आपकी बला से। मैं अच्छी मैं अच्छी क्या मैं अच्छी मैं अच्छी का, अगर मैं अच्छी तो सब अच्छे। थोड़ा सा रिकैप करते हैं इन बातों को देखकर कि ये जो बात है कि फलां बीमार था तो अल्लाह ताला कहते हैं आपने आदत नहीं की, मैं भूखा था इसने आपको क्या दिया। सोचा आपने कभी हमारे इर्द गिर्द बीमार हैं, हमारे इर्द गिर्द भूखे हैं, तो आज से फिर उनकी फिक्र कीजिए। और हमने सीखा कि हुस्ने खुल्क खुशबख्ती की अलामत है, मांगिया करें अल्लाह के नबी की दुआ में, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका अहसने अखलाकन, कि अल्लाह मैं अखलाक मांगती हूँ, और वो तो बड़ी प्यारी दुआ है जो आप आईना देखते हुए मांगते, अगर आप अपनी शक्ल में ही ना खो जाएं। कि कमा हसन तखल की फहसिन हुलुकी, तो ज़ाहरी शक्ल को संवारते चमकाते कहीं बातनी हुसन से ना महरूम हो जाए। फिर इस तरह अगर आप परेशान हैं तो देखिए कि कहीं आप बद अखलाक तो नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सिलसिला सही है कि ये रिवायती 1955 के बेहतरीन शख्स हुआ जो घर वालों के लिए बेहतरीन है, और मैं अपने घर वालों के लिए तुमसे बेहतर हूँ। तो करना क्या है, अल्लाह की रज़ा के लिए हुस्ने अखलाक अपनाइए। इसकी बेहतरीन मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कुरान भी कहता है व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम, सूरत नून की आयतें, और इसी तरह अल्लाह के नबी के बारे में सहाबा की गवाही है, सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले थे, खुश रहते थे। हालांकि लिस्ट बनाए ना तो अल्लाह के नबी को जो गम और तकलीफ़ें, और सबसे बड़ी बात है कि जो ज़िंदगी में चैलेंजेस मिले तो सबसे ज़्यादा थे। तो जब उनके साथ इतना कुछ हुआ और वो दुखी ना हुए, तो मैं आप तो वैसी नेमतों में पलते हैं। तो सीखने की बात, लोगों की बदखुलकी का जवाब खुश खुलकी से दीजिए, और अल्लाह के नबी की तरफ से जन्नत के दरमियान में घर का वादा है उस शख्स के लिए जो हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे, और आला जन्नत में मकान उसको मिलेगा जो अखलाक अच्छा रखे। जामे तिरमिज़ी 1993 का ये ख़ुलासा है। तो खुश अखलाकी वायसे सुकून, ज़मीर मलामत नहीं करेगा। और सहाबा में से एक सहाबी जो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देकर कुरान पाक का हिस्सा बन गए, क़यामत तक ये आयत सूरह हशर में लोग पढ़ेंगे और इनका वाक़या बयान होगा। तो कभी अल्लाह हमसे भी कोई ऐसी नेकी ले ले। फिर हमने इसमें अब्दुल्ला बिन मुबारक के बहुत खूबसूरत अमल देखे, हज छोड़ दिया कि बस्ती वालों को खाना दे दें। हम हज पे हज भी करते हैं, उम्रे पे उम्रे भी करते हैं, और अपने घर के मुलाजमों को पे तक पूरी नहीं देते, और ख्वाब में हज की कबूलियत की बिशारत भी पा ली उन्होंने। फिर इसी तरह यहूदी पड़ोसी को बेटों से पहले खिलाया पिलाया, अखलाक से मुतासिर होकर वो इस्लाम पे आ गया। अल्लाह हमारे हमसायों को भी इसी तरह हमारे अखलाक के ज़रिए इस्लाम के करीब ले आ। तो क्या सीखा हमने, लोगों की बद अखलाकी का जवाब खुश अखलाकी से देना, लोगों की बजाय अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करनी है, और अल्लाह को अपने नफ़ा और नुकसान पर कादिर समझना। दुनिया धोखे का सामान है लेकिन दारुल अमल भी है, अपनी आखिरत के लिए यहाँ से ज़्यादा राह लेकर जाना है, और दुनिया के गमों को हकीर, आखिरत के गमों को बड़ा जानना है। अल्लाह ताला आसान कर दे। आप देख रहे हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अखलाक, मामलात, डीलिंग्स, और हम इसी को भूल कर बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी इबादत करते हैं। जितने हम नेक होते हैं हमारी तस्बीह के दाने उतने बढ़ते जाते हैं। पांच से सात नमाजों से फिर हम सारी सारी रात के नफलों पे भी आ जाते हैं, और घर में रहे बीमार का हाल तक नहीं पूछते, इल्ला माशाल्लाह।